वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने बजट के जरिए लोगों को लुभाने और सभी सेक्टर्स के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हुई। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, क्या ये कम है?
मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया, टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ।
वित्त मंत्री ने इस बार न केवल पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया, बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों की घोषणा भी की। सरकार ने डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि RBI जल्द ही डिजिटल रुपी जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है।
सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी, बस उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, वो प्रश्न और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद।
बजट पर उम्मीद के मुताबिक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार ने इसे बेहतरीन बजट बताकर अपनी पीठ थपथपाई है, तो विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया। सत्ताधारी दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बजट को खूबियों से परिपूर्ण बताते हुए कहा,
यह गरीब कल्याण बजट है, यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है, ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर अपनी निराशा जताई।
ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इतने बड़े नियरली 39 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर निराशा जताई है। भूपेश बघेल ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा,
ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए।
देश में कोरोना के हालात काबू में आते दिख रहे हैं, हालांकि केरल की स्थिति अभी चिंता का सबब बनी हुई है। मंगलवार को यहां 700 से अधिक मौतें कोविड के चलते रिकॉर्ड की गईं। दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। महाराष्ट्र में सुधरते हालात के कारण कई प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। मुंबई में लोगों के लिए पार्क को खोल दिया गया है और समुद्र तटों पर जाने की अनुमति उन्हें दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू को भी हटा लिया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को भी 50% क्षमता के साथ शुरू किया जा रहा है। और चलते चलते थोड़ी चर्चा चुनावी राज्य उत्तराखंड की, जहां सत्ताधारी भाजपा को कांग्रेस पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुद्दों पर जोर देते हुए कहते हैं,
आपके समय में लूट चलती है और दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं देश का चौकीदार हूँ, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। 14 तारीख को मतदान होना है, आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आज ये चुनाव काम करने वालों के बीच है, काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच है, जिन्होंने काले कारनामे किए हैं। और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में, और मुझे जब से मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिली है, मैंने लगातार एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना मैंने लगातार काम किया। भाइयों बहनों, जितनी मेरी सामर्थ्य थी।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बागी सिरदर्द साबित हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हरीश रावत ने गुटबाजी और बगावत की बात को खारिज किया है। वे कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है,
लोगों में उत्साह है, लोग कांग्रेस के साथ हैं। और मैं भी लोगों से कह रहा हूं, बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, गैस सिलेंडर नहीं होगा 500 के पास। हम लगातार लोगों के बीच में हैं, पार्टी संगठित तौर से चुनाव अभियान चला रही है, हमारे सारे नेतागण, वरिष्ठ नेतागण एकजुट हैं।
आपको बता दें कि 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए राज्य में 14 फरवरी को वोट डाली जाएंगी। यहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।